Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. आप सबने कल्पना चावला का नाम सुना होगा। अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो बहुत फेमस बहन है। जब वो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी तो उसने पृथ्वीवासियों के लिए एक संदेश भेजा था। उसने कहा कि जैसे ही मैं ऊपर गई और मैंने ऊपर से जब नीचे की तरफ इस दुनिया को देखा तो मुझे ये एक बहुत सुंदर बॉल नजर आई, इतनी सुंदर कि मैं इसको देखती ही रही। और फिर मेरे मन में आया कि इतना सुंदर ग्रह और इतनी इतनी सुंदर इसकी झलक, तो इस पर रहने वाले लोगों को कितना प्यार से रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं साक्षी दृष्टि। जब अपन किसी चीज को न्यारे होकर के देखते हैं, डिटैच होकर के देखते हैं, तो वो अपने को सुंदर नजर आती है। और जब अपन उससे अटैच होकर के उसको देखते हैं तो उसमें कमियां नजर आती हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि इस दुनिया को आप साक्षी होकर के देखो और मुझे अपना साथी बनाओ। लेकिन कई बार बच्चे इसको उलट देते हैं, दुनिया को साथी बना लेते हैं और बाबा को साक्षी होके देखते हैं। तो ये उल्टे नहीं, इसके लिए क्या करें? आप सबने सुना होगा कि सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था और सुकरात के बहुत सारे शिष्य थे। तो सुकरात को जब जहर का प्याला पिलाया गया, शिष्य उसके आसपास थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपको कैसा लग रहा है? तो सुकरात ने कहा, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, लेकिन मैं ठीक हूं। थोड़ी देर के बाद शरीर के ऊपर और असर आया। फिर पूछा, गुरुजी आप कैसे हैं? तो कहा, मेरी इंद्रियां मेरा साथ छोड़ रही हैं, ऐसे लगता है जैसे अब ये मेरे से अलग हो रही हैं, लेकिन मैं ठीक हूं। अब ये भी साक्षी अवस्था है। सारा जहर शरीर में फैल गया और इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, लेकिन आत्मा बिल्कुल ठीक ठाक है। जहर का असर आत्मा पर नहीं है, शरीर पर है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस शरीर में रहते हुए क्या आप इस शरीर को साक्षी होके देख सकते हैं? मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है, ये जो भी क्रियाएं कर रहा है उनको मैं साक्षी होके देख रही हूं। साक्षी होके देखने में मजा बहुत आता है। जैसे लोग रोज के जीवन से थक जाते हैं ना, तो कहते हैं चलो भाई कहीं घूमने चलो। आप भी ऐसे कहते हो, बरसात हो रही है चलो गाड़ी लेकर के खेतों में चक्कर लगा के आए, चलो डैम देख करके आए, चलो फलाने बगीचे में चलें, जाते हो ना घूमने। तो सफर चाहे बस का हो, ट्रेन का हो, हवाई जहाज का हो, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मनुष्य उन चीजों को साक्षी होके देखता है। आप ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की से देख रही हैं, कितने सारे दृश्य गए, पेड़ गए, पहाड़ गए, नदी नाले गए, लेकिन आपको आनंद आ रहा है क्योंकि एक में भी आपकी बुद्धि फंसी नहीं। इतनी चीजें देखी लेकिन साक्षी होके देखी, इसलिए लोगों को सफर में आनंद आता है। कितने कितने घंटे सफर चलता है और घर में कुछ भी ना करना हो तो भी लोग थक जाते हैं। क्यों थकते हैं? क्योंकि आत्मा अटैच हो जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को जीवन जीने का तरीका बताया कि बच्चे आप इस जीवन को भी एक सफर मान करके इस यात्रा को करो। यात्रा में जो लोग मिलते हैं उनको साक्षी होके देखो, जो दृश्य दिखते हैं उनको साक्षी होके देखो। और यात्रा का एक नियम है कि एक स्टेशन आया गुजर गया, दूसरा आया गुजर गया। बाबा ने कहा आपकी यात्रा में जो एक स्टेशन आया, जो एक दृश्य आया, वो 5000 साल के बाद ही दोबारा आएगा, उससे पहले वो आएगा नहीं। तो इसलिए उसको साक्षी होके देखो, खुशी खुशी उसको पार करो। और जब हम साक्षी होके देखते हैं तो बाबा को साथी बनाना सरल है, क्योंकि बुद्धि तो किसी में उलझी नहीं ना, बुद्धि तो एक ही है। चाहे इसको किसी दृश्य में उलझा लो और चाहे इसको बाबा में लगा लो। तो जब दृश्यों में और व्यक्तियों में बुद्धि गई ही नहीं तो सीधी कहाँ जाएगी? बाबा में जाएगी। जब नीचे उलझेंगे तो ऊपर का साथ छूट जाएगा, और जब नीचे का साथ छोड़ देंगे तो ऊपर का साथ मिलता रहेगा। इसके लिए हमारी आत्मस्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। कहते हैं जब बच्चा संसार में आता है तो सबसे पहले इस देह के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, दूसरे नंबर पर देह के संबंधों के साथ, और तीसरे नंबर पर देह के पदार्थों के साथ। तो बाबा कहते हैं जैसे प्रथम अटैचमेंट शरीर के साथ है तो प्रथम डिटैच भी शरीर से ही होना है। और इसके लिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं आत्मअभिमानी भाव, आत्मअभिमानी भाव। बाबा की इस बात में बड़ा गहरा राज है। क्यों? क्योंकि आदत जितनी पुरानी होती है उसको छुड़ाने में मेहनत भी उतनी ही ज्यादा लगती है। इसलिए बाबा बार बार कहती हैं और हम बच्चे बार बार सुन करके बन भी जाएंगे, ये भी बाबा को निश्चय है। लेकिन बाबा ये कहती हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति के लिए हर रोज नया नया अनुभव करो, चिंतन करो शरीर क्या है, आत्मा क्या है। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, एक संत ने कहा कि आप कोई भी चीज देखते हो ना तो उसको साधारण रूप में मत देखो, उसके अंदर जाओ, उसकी जो वास्तविकता है ना उसको कुरे दो। तो जैसे उसने एक उदाहरण दिया कि आपके सामने एक कपड़ा है सिला हुआ, कुर्ता है सिला हुआ कुर्ता है। अब वो कहता है आप इस सिले हुए कुर्ते की गहराई में जाओ। कैसे जाएंगे? अगर आप कुर्ते की सिलाई उधेड़ दें तो क्या बचा? कपड़ा बचा, कुर्ता तो नहीं बचा ना। कुर्ता तो वो तब है जब सिल गया, जब सिला नहीं है तो वो कपड़ा है। अब कपड़े के आप तार निकाल दो, एक इधर तार होता है एक इधर होता है, आप उसको निकाल दो तारों को तो क्या बचा? धागा। आप धागों को भी उनका जो ऊपर में वो लगा हुआ है ना बट उतार दो क्या बचा? रुई। बट उतर गया तो रुई बन गई। तो बेसिक चीज क्या है? रुई है। रुई के रूपांतरण होते 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 कुर्ता बन गया। फिर उसने कहा, मान लो किसी ने आपको कोई गलत शब्द कह दिया, आपको चुभ गया, तो आप उस शब्द के भी गहराई में जाओ, क्या है वो। किसी ने किसी को कहा पागल, पागल कैसे बनता है? प के साथ आ मिला, ग के साथ ए मिला, ल के साथ ए मिला। तो वास्तव में तो ये छह अलग अलग अक्षर हैं, और अक्षर भी जब हमने बनाए, समझे, भाषा पढ़ी तो बन गए। अब जिसने भाषा नहीं पढ़ी उसके लिए प का अर्थ क्या है, आ का अर्थ क्या है, ग का अर्थ क्या है? तो उसने कहा कि कोई भी शब्द आपको बोले, आप उसको फील मत करो, आप उसकी गहराई में जाओ, उसको संधि छेद करो और समझो ये केवल एक ध्वनि है, बाकी इसने मुझे कुछ कहा नहीं है, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। अब इसी तरह आप इस शरीर की भी बनावट की गहराई में जाइए, शरीर क्या है। शरीर पांच तत्वों का बना एक ढांचा अपने को दिखाई देता है, लेकिन इस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? उसको कहते हैं सेल, कोशिका। पूरे बॉडी में बिलियन ट्रिलियन सेल्स, कोशिकाओं को मिला करके उत्तक बनते हैं, जिनको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज को मिला करके अंग बनते हैं, ऑर्गन्स, और अंगों को मिलाकर के एक सिस्टम बनता है। इस सारे शरीर में सात अलग अलग सिस्टम है, और सातों सिस्टम्स को मिलाकर के ये पूरी बॉडी बन गई। तो वास्तव में ये शरीर क्या है, इसकी इकाई क्या है? जैसे कहते भवन कैसे बना, ब्रिक बाय ब्रिक भवन बन गया, एक एक ईंट मिलाकर के भवन बन गया, एक एक शब्द मिलाकर के मोटी किताब बन गई, एक एक धागा मिलाकर के कपड़ा बन गया, इसी तरह से एक एक सेल मिलाकर के पूरा बॉडी बन गया। तो ये केवल सेल्स है, नथिंग एल्स, कोशिकाएं हैं, जुड़ी हुई कोशिकाएं। अब इनमें से कौन सी कोशिका में मैं कहने की शक्ति है? जब आप कहते हो मैं, कौन सी कोशिका ने कहा? बिलियन ट्रिलियन जो सेल्स हैं उनमें से किसने कहा, कौन सी वाली ने कहा? सेल्स बोलती हैं क्या? तो फिर कौन बोला? आत्मा बोली। तो मैं कौन हूं? जैसे मकान है, इसमें अभी ये आवाज है, कौन सी ईंट बोल रही है? ईंट तो नहीं बोल सकती, इस मकान के अंदर रहने वाले हम और आप बोल रहे हैं। तो ये ईंटों से, सेल्स से बना हुआ मकान है, इसमें कौन बोल रहा है? इसके भीतर, भीतर बैठा है कोई, वो बोल रहा है, दिखता नहीं है बाहर से। अब कोई खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बाहर से गुजरेगा उसको हम भी नहीं दिखेंगे, बोलेगा मकान में से आवाज आ रही है। मकान में से आवाज थोड़ी आ रही है, मकान थोड़े बोल रहा है, मकान के भीतर बैठे हुए लोग बोल रहे हैं। तो आत्मा बोल रही है, शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा बोल रही है। अब आत्मा दिखती नहीं, पकड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि सुरक्षित है ना। हमने मकान क्यों बनाए? ताकि इसमें बैठ के हम सुरक्षित रहें। तेज आंधी आए, बरसात आए, तो सुरक्षित रहेंगे ना। तो ऐसे ही आत्मा को सुरक्षा चाहिए, इसलिए उसको इस मकान के अंदर रखा गया है। और जैसे इस मकान के खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, बाहर का देखे, पर्दे में से देखे, तो आत्मा को भी देखने के लिए खिड़की, दरवाजे, सुनने का, खाने का सब साधन है, लेकिन बैठी है इसके अंदर। तो ये एक मकान है और मैं आत्मा इस मकान की मालिक हूं, संचालक, मैं मालिक इसमें बैठी हूं। तो देखो इस मकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मालिक के बैठे थोड़ी कोई मकान। अब अपन इस मकान के अंदर बैठे हैं तो किसी की हिम्मत है क्या खिड़की का कोई दरवाजा कोई निकाल ले जाए? नहीं ना, कहेंगे अंदर लोग बैठे हैं। और अपन नहीं होंगे तो कोई कुछ भी निकालेगा, कोई पर्दा उतार लेगा, कोई अंदर की कुर्सी उठा ले जाएगा, कहेंगे भाई मकान में कोई नहीं है, काम की चीजें निकाल लो। तो इस मकान में भी क्या होता है, जब आत्मा मालिक निकल जाता है तो फिर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कोई कहता आंख निकाल लो भाई, दूसरा कहता है गुर्दा निकाल लो, तीसरा कहता है हार्ट निकाल लो, आजकल तो हड्डियां भी निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं इसका, जैसे इस मकान का निकाल लेते हैं। और इसका निकाल करके क्या करेंगे, दरवाजा कहीं दूसरे मकान में ही तो फिट करेंगे ना, और तो कहीं वो काम आएगा नहीं। तो इसमें से भी जो चीज निकालेंगे वो कहाँ फिट करेंगे, किसी दूसरे मकान में, जहां ये नहीं होंगे, जहां ये नहीं होंगे वहां निकाल देंगे। तो ये एक जड़ मकान है आत्मा के लिए, चलता फिरता मकान है। अब आप जिस मकान में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, उसमें आपके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ना। देखो क्या क्या चीजें हैं, गिनती करो। आपके बैठने की कुर्सी है, वो भी आपसे अलग है, उसके नीचे चादर बिछी हुई है, पंखे हैं, ये टेबल है, माइक है, बहुत सारी चीजें हैं ना, साउंड बॉक्स है, चित्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस मकान के अंदर एक मालिक ही नहीं है, मालिक के अलावा और क्या क्या है, उनके बिना काम नहीं चलता ना, बाहर से तो दिखता नहीं, अंदर बहुत कुछ है। अब मान लीजिए अपने को कोई कहता है कि भाई भागो भागो भूकंप आ गया, मकान गिरेगा, या और कोई कारण है, कोई कहता है भाई पीछे से आग लग गई है, भागो भागो, तो मकान में से कौन भागेगा? हम भागेंगे ना, कुर्सी भागेगी क्या, सोफा, टेबल, माइक, क्यों? क्योंकि ये जड़ चीजें हैं, ये मकान के साथ ही संपत्ति है, मकान की, कहते हैं ना चल अचल संपत्ति, तो जो उठाई जा सके उसको कहते हैं चल संपत्ति, और जो ना उठाई जा सके उसको कहते हैं अचल संपत्ति। लेकिन है ये मकान का हिस्सा, आप भाग गए लेकिन बाकी सब चीजें यहीं रही। इसी तरह से जब इस शरीर को भी लगता है, आत्मा को लगता है कि मेरा ये शरीर, इसको आग लगने वाली है, या ये टक्कर लगने वाली है, या ये पानी में डूब रहा है, या इसको और कोई नुकसान हो रहा है, तो इसमें से कौन निकल के भागता है? आत्मा भाग जाती, उसको लगता है अब ये रहने लायक नहीं है। अपन भी मकान कब छोड़ के भागते हैं, अब ये रहने लायक नहीं रहा, तो आत्मा भी भाग जाती। लेकिन इसमें कितनी चीजें, गुर्दा भागा, हार्ट भागा, भागो भागो आग लग गई, भागो भागो पानी आ गया, जो शरीर के साथ होगा वो इसके अंगों के साथ भी होगा, लेकिन निकल के कौन भाग गया? आत्मा। तो चेतन कौन है, जीवित कौन है? आत्मा है। तो मैं कौन हूं, शरीर हूं या आत्मा हूं? मैं तो आत्मा हूं। शरीर क्या है? शरीर मेरा वस्त्र है, शरीर मकान है, शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। इसके बिना मुझ आत्मा का इस रंगमंच पे कोई काम नहीं है। मैं जैसे ही रंगमंच पर आऊंगी मुझे इसको पहनना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको ना पहनूं तो रंगमंच पर मेरी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए कहते हैं शरीर और आत्मा का चोली दामन का साथ है। किसी का बहुत गहरा संबंध हो तो कहते हैं ऐसा साथ है जैसे शरीर और आत्मा का। क्यों? क्योंकि जिस दिन दोनों मिले उस दिन जीवन बन गया, और दोनों अलग अलग हो गए उस दिन मृत्यु हो गई। तो मैं आत्मा इस रंगमंच पर शरीर के बिना रह नहीं सकती, परम धाम में शरीर के बिना रह सकती हूं लेकिन रंगमंच पर नहीं रह सकती। तो शरीर मुझ आत्मा का साधन। अब इस साधन से अपन सारा दिन सेवा करवाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि आप आत्मा करण हार भी हैं और करावन हार भी हैं। करण हार हैं, बहुत सारे काम आत्मा स्वयं करती है, और करावन हार है, इंद्रियों के द्वारा करवाती है। तो बाबा कहते हैं जब आप रंगमंच पर काम करते हो तो ये दोनों स्मृतियां आपको रखनी पड़ेंगी। इंद्रियां सेवा कर रही हैं और मैं आत्मा इनके माध्यम से सेवा करवा रही हूं, तो ये साक्षी अवस्था है। जैसे मम्मा की जो किताब अपने पास है उसमें एक अनुभव है मम्मा का कि एक बार मम्मा अनाज साफ कर रही थी। तो पहले तो यज्ञ में अनाज साफ करने वाले श्रमिक नहीं होते थे जैसे आजकल हैं। आजकल भी बहनें माताएं करती हैं पर श्रमिक भी हैं, पर उस जमाने में तो ये श्रमिक थे ही नहीं, सब काम बाबा मम्मा बच्चे किया करते थे। तो मम्मा ऐसे अनाज साफ कर रही थी तो एक बहन ने देखा, उसने कहा सब बहनों को, अरे अरे देखो देखो मम्मा अनाज साफ कर रही है। तो सब भाग के आए, मम्मा मम्मा हम करेंगे हम करेंगे, मम्मा लाओ हमको दो। तो मम्मा के हाथ में ऐसे थाली थी अनाज की, तो एक बहन ने कहा मम्मा मुझे दे दो मैं करूंगी। तो मम्मा मम्मा ने कहा मैं अनाज साफ थोड़े कर रही हूँ। तो कहा मम्मा आप और क्या कर रहे हो, थाली आपने ले रखी अनाज ही तो साफ कर रहे हो। तो कहा नहीं ये तो मेरे नौकर कर रहे हैं, मैं तो बाबा के पास हूं। अब देखिए कितनी रियल बात है, सचमुच अनाज साफ करने में कौन कौन लगा हुआ है, आंखें और हाथ बस दो ही नौकर लगे हुए। कान की आवश्यकता है क्या, मुख की आवश्यकता है क्या, पांव की आवश्यकता है क्या? केवल दो ही काम कर रहे हैं, बाकी तो सब आराम फरमा रहे हैं। और मालिक कहाँ है, मालिक बाबा के पास। अगर नौकर छोटे छोटे काम करते भी मालिक को कहते हैं आप मेरे पास बैठोगे तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, तो ऐसे नौकर का भाई क्या फायदा। और जो रोज के सिखाए हुए काम है उनको करते हुए भी नौकर कहता है मालिक होगा तो ही करूंगा, नहीं तो एक बार सिखा दिया फिर मालिक क्या करता, अब तुम लगे रहो काम में मैं अपना दूसरा काम करूं। मालिक को फुर्सत थोड़ी होती है कि वो नौकरों के पास ही बैठा रहे। तो अगर अपन मालिक को पास ही बिठा करके काम करते हैं, हाथ काम कर रहे हैं आत्मा उसके पास है, आंख काम कर रही है आत्मा उसके भी पास बैठी है, तो ये क्या है, आत्मा पुरुषार्थ कब करेगी, डिटैच कब होगी, बाबा को कब याद करेगी। हर काम में वो पास ही आ जाती है, हर काम में नौकर भी लग जाता है मालिक भी लग जाता है, फायदा क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे न्यारे होना सीखो, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करो मैं साक्षी हूं, काम भी करना है, काम को छोड़ना नहीं। जो कर्म सन्यासी थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया, उन्होंने कहा काम करेंगे ना कोई पाप हो जाएगा, हम कमाएंगे नहीं, खेत में काम करेंगे तो कीड़े मकोड़े मरेंगे, दुकान में काम करेंगे तो कम ज्यादा तोला जाएगा, ऑफिस में काम करेंगे तो किसी से गुस्सा कर लेंगे, इसलिए कर्म सन्यासियों ने कहा हम संसार में रहेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, हमको मुक्ति चाहिए। लेकिन कोई भी आदमी कर्म का सन्यास तो कर ही नहीं सकता जब तक वो शरीर में है। कर सकता है क्या? खाना खाना भी तो कर्म है ना। आप कमाए जाए बेशक मत, आपने काम का सन्यास करने वालों की तो बात सुनी होगी, लेकिन खाने का सन्यास करने वालों की बात सुनी कभी? भाई ये सन्यासी हैं जिन्होंने खाने का सन्यास किया हुआ, नहीं ना। तो खाना भी तो क्या है, वो भी तो कर्म है ना। खाना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, सब कर्म। और जिसने शरीर धारण किया वो कर्म तो करेगा ही। तो कर्म संन्यास भारत में लंबे समय तक लोगों ने सिखाया, सन्यासियों ने सिखाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं निकला। और दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो काम को ही पूजा मानते हैं, काम करते हैं दिन रात, बस काम करते हैं, काम ही भगवान है, काम ही पूजा है, काम ही मंदिर है। लेकिन ऐसे लोगों को काम करते क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाप सब कुछ उनसे होता रहता है। तो काम हुआ या काम के बदले बेकाम हुआ, जिस काम में पाप, झूठ, चोरी, ठगी, बेईमानी, दगा, चालाकी ये सब कुछ है, उसको क्या कहेंगे? वो तो बाबा की भाषा में तो विकर्म हो गया, कर्म नहीं हुआ, विकर्म हो गया। तो ना तो काम का सन्यास बाबा ने सिखाया। अभी आप साक्षी होके बैठिए। ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे कर्म की। तो ना तो बाबा ने कर्म सन्यास सिखाया और ना बाबा ने कर्म में आसक्त होना सिखाया। बाबा ने साक्षी होकर के कर्म करना सिखाया, कर्मेंद्रियों से न्यारा होकर के कर्म करना सिखाया, देह को इंस्ट्रूमेंट मान करके निमित्त भाव धारण करके कर्म करना सिखाया। तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें हम सब कुछ करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, अथक होकर के सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते भी मन न्यारा रहता है। देखने में ये आता है कि व्यक्ति काम करके इतना नहीं थकता जितना वो काम का चिंतन करके थकता है। अगर सेवा की ओर फुल स्टॉप लग गया, सेवा की ओर फुल स्टॉप लग गया, उसको थकान नहीं होती है, उसको लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर कोई सेवा की और उसके बाद उसका चिंतन चलता रहा, या सेवा करने से पहले उसके बारे में उसका चिंतन चलता रहा, तो ये चिंतन उसको थकाता है। और चिंतन कब आता है? जब कर्म के साथ राग या द्वेष जुड़ जाता है। और चिंतन मुक्त कब होते हैं? जब कर्म के साथ डिटैच भाव रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कार्य करो, फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। संगम युग में तीव्र पुरुषार्थ का साधन है साक्षी दृष्टि। साक्षी दृष्टि व्यक्ति क्या करता है? जैसे अपन कोई कहानी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, सीरियल देखते हैं मान लीजिए, तो उसमें भी अपन साक्षी होते हैं और इसलिए उसको पूरा समझ पाते हैं। और इसलिए जो सीन गुजर गया उसके साथ अपन उसको अपन फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसे थोड़े करते हैं कि पर्दे पे सामने दूसरा दृश्य और सोच अपन पिछले के बारे में रही है, नहीं तो सामने वाला समझ में ही नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं ये भी 5000 साल का बड़ा सीरियल है जो अपन देख रहे हैं। इसमें कितने सारे दृश्य गुजर गए, बहुत सारे तो गुजर गए और अभी भी हमारे सामने दृश्य चल रहा है। हर दृश्य का अपना महत्व है, तो अगर अपन सामने वाले दृश्य को एंजॉय करते हैं, इस समय जो हो रहा है उसको देख करके मैं आनंदित हूँ, बहुत सुंदर सीन आया, इस समय जो हो रहा है बहुत बढ़िया है, फिर एक सेकंड बाद अगला सीन आ गया, ये भी बहुत बढ़िया है, तो क्या होगा? पास्ट इज पास्ट, वर्तमान में अपन आनंदित रहेंगे और भविष्य की अपने को चिंता नहीं है, क्योंकि आता जाएगा और आनंदित होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बीते हुए को पास करो, हमेशा बाबा के पास रहो। अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में था और जो भी पेपर परीक्षा आपके सामने आती है उसमें आपको पास होना है। जो व्यक्ति पास्ट को पास्ट नहीं करता, पास्ट के साथ चिपक के रहता है, वो वर्तमान को खो देता है, क्योंकि एक बार में तो एक ही दृश्य दिखेगा ना। इसलिए कहते हैं दुनिया में 85% लोग पास्ट में रहते हैं और इस कारण वो अपनी 85% शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। पुराने समय की असफलताएं, पुराने समय की गलतियां, पुराने समय में किसी ने हमको दुख दिया या हमने किसी को दिया, या पुराना किसी का बोला गया कड़वा बोल, किया गया किसी का अपमान, ये बातें अगर बुद्धि में तैरती हैं, बार बार याद आती हैं, तो क्या होगा? अपन उन यादों को और गहरा करते जाएंगे। जैसे बच्चे को अपन पाठ याद कराते हैं तो बार बार बुलवाते हैं ना, इसलिए कि बच्चे को वो पाठ पक्का याद हो जाए, और अपन उन स्मृतियों को बार बार याद कर रहे हैं तो अपने को भी वो क्या हो जाएंगी, और पक्की हो जाएंगी। तो पास्ट की बातें तो इतनी पक्की हो गई और वर्तमान की जो जरूरत थी वो भूल गई, होता है ना, जरूरत वाली बात भूल जाती है और जिसकी जरूरत नहीं है उसको अपन बार बार रिपीट कर करके उसको इतना पक्का कर लेते हैं कि वो भूलती ही नहीं, तो इसमें दोहरा नुकसान हो गया। इसलिए कहते हैं समय बहते पानी की तरह से है, जब आप सो जाते हैं ना तब भी समय चलता रहता है, वो सोता नहीं है। अपन सोचे अपन सो गए तो समय भी सो गया, वो जाग रहा था और वो चल रहा था और चलते चलते देखो कहाँ पहुंच गया। जैसे नदी में कोई पानी भरे, एक चुल्लू में पानी आया, फिर दोबारा चुल्लू डालेगा तो वही पानी आएगा क्या? वो तो आगे गया, अब तो दूसरा पानी हाथ में आया, फिर तीसरा आया, तो एक सेकंड गई, अब दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, चलता रहता है समय। तो बाबा कहते हैं समय जड़ है, वो भी चलता रहता है, आप चेतन हो फिर आप क्यों खड़े हो जाते हो? आप भी समय के साथ दौड़ो, समय के साथ चलो। कौन सा समय चल रहा है? संगम युग। कलयुग तो बीत गया ना, अभी संगम युग चल रहा है, तो हमको संगम युग के साथ साथ चलना है। संगम युग जो हमें कह रहा है वो हमको करना है, जो दिखा रहा है वो हमको देखना है, जो प्रेरणा दे रहा है वो हमको लेनी है, और जो वरदान और जो तोहफे हमको दे रहा है उनको हमें संभाल के रखना है, फायदा उठाना है। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वो विजयी बनता है, और जो समय से धीरे चलता है तो समय का फायदा नहीं उठा पाता, और समय के साथ वही चलेगा जो पास्ट को पास्ट कर देगा, साक्षी हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा को साथी बना करके रखो, बाबा तो हम बच्चों का साथी है ही, बाबा का वायदा है कि बच्चों ने कहा, बच्चों ने बुलाया और बाबा आ गया। बाबा साथ कब छोड़ देता है? बाबा कहता है अपने दिल रूपी सिंहासन पर मुझे बिठाओ, लेकिन दिल रूपी सिंहासन पे कोई बात आके बैठ गई, कोई व्यक्ति आके बैठ गया, कोई पदार्थ आके बैठ गया, तो बाबा बैठेगा नहीं। ऐसे थोड़े हैं कि मैं किसी और से प्यार करूं और बाबा मेरे से प्यार करे, ये तो हो नहीं सकता। बाबा तो कहता है मुझे ऐवे विचारी मन चाहिए, जो केवल मेरे को ही प्यार करे, मैं उसी को प्यार करूंगा। अगर तुम कहते हो बाबा मेरे लिए तो और बहुत हैं, तो बाबा कहता है मेरे लिए भी और बहुत। तो बाबा फिर दूसरे बच्चे में ध्यान लगाता है, बाबा क्यों फिर उस बच्चे में ध्यान लगाएगा? इसलिए बाबा को ऐवे विचारी प्यार चाहिए, बाबा को सच्चा प्यार चाहिए, अद्वैत प्यार चाहिए, द्वैत वाला नहीं चाहिए, थोड़ा आपसे भी थोड़ा दूसरे से भी, समर्पण वाला प्यार चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों का मेरे से ऐसा स्नेह है उन बच्चों के तो मैं सदा साथ साथ हूं। वो बच्चे मुझे याद नहीं करते, ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं। वो बच्चे मेरे से सुरक्षा नहीं मांगते, उन बच्चों को मैं बिन मांगे सुरक्षा देता हूं। लेकिन इसके लिए भी बाबा ने बच्चों को युक्ति बताई कि अगर आप अमृत वेले परमात्म प्यार से अपने मन को भर लो, तो सारा दिन वो सुबह का भरा हुआ परमात्म प्यार आपको खुशी और शक्ति देता रहेगा। इसलिए अमृत वेले का विशेष विशेष महत्व है। और अमृत वेले भी कौन बच्चा बाबा के प्यार से अपने आप को भरेगा? जिस बच्चे का मन खाली होगा। बर्तन में चीज कब भरी जाती है? जब बर्तन खाली हो। बर्तन पहले से ही भरा हुआ होगा तो क्या करेंगे, उसमें कुछ डालेंगे वो बाहर निकल आएगा, मिक्स हो जाएगा, पहले वाला भी दूसरे वाला भी। तो बाबा कहती हैं मन को सुबह सुबह खाली मन को मेरे पास लेकर के आओ। और सुबह सुबह खाली मन किसका होगा? जिसका रात को खाली हुआ होगा। तो रात को मन खाली करो। देखो पहले जमाने में, आजकल तो नियम बदल गए, पहले जमाने में लोग सुबह सुबह जल्दी पानी भरने जाते थे ना, तो रात को मटका खाली करके उल्टा करके रख देते थे और सुबह फिर उसमें ताजा पानी भरते थे। ताजे पानी का बड़ा महत्व होता था, बासी पानी ताजा पानी, बासी पानी का भोग नहीं लगेगा, बासी पानी से भोजन नहीं बनेगा, ताजे पानी का महत्व होता था। आजकल तो क्या है, नल आ गए हैं, अपन कहने को उसे ताजा पानी कहते हैं, वो ताजा होता नहीं है, क्योंकि टैंकी में तो वही पानी भरा हुआ है, बरसों का भरा हुआ है, वही चल रहा है, मिक्स है सब कुछ। लेकिन पहले कुओं से पानी लेके आते थे ना, तो उसमें कहते थे ताजा पानी। तो उस पानी का महत्व होता था, खाली बर्तन में सुबह सुबह पानी भरते थे। अब बाबा भी कहते बच्चे आप अपने मन को खाली करके रखो रात को। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को विधि बताई, रात को सोने से पहले बाबा को सारा अपना हालचाल सुनाओ। सुनाते होंगे आप सभी जरूर। बिस्तर पर ही बैठ करके, अगर पास में कोई जगह है तो ठीक, नहीं तो वहीं बैठ करके 15 मिनट योग करो, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो करो, और डिटैच हो जाओ। अभी शरीर कहते हैं जो नींद होती है ना वो आधी मृत्यु होती है, और जो मृत्यु होती है वो पूरी नींद होती है, सदाकाल की नींद कहते हैं, ये चिर निद्रा में सो गया। और जो निद्रा होती है वो आधी मृत्यु होती है। तो मृत्यु के समय क्या करते हैं लोग, शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा निकल जाती है। तो रात को अपन भी क्या करने जा रहे हैं, अर्ध मृत्यु। अर्ध मृत्यु का मतलब क्या है, आत्मा ने शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन दोबारा आने के लिए छोड़ा है, आएगी इसमें दोबारा। और शरीर छोड़ करके कहाँ जाती है? आत्मा इसी वायुमंडल में थोड़े घूमती है, एक बार तो जाती है ना। तो अपन भी कहाँ जाएंगे? गाउन को उतार के, ड्रेस को बदल के बाबा के पास जाएंगे, बाबा अब मैं आत्मा आपके पास आ गई, सारा झंझट झमेला समेट करके आपके पास आ गई, निश्चिंत हूँ मैं, अब साक्षी हूँ, दुनिया में कुछ भी हो रहा है लेकिन मैं आत्मा आपके पास हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, भारीपन नहीं। जैसे मैं रंगमंच पर जाने से पहले, सतयुग में जब आत्मा उतर के आएगी, उससे पहले भी तो परम धाम में थी ना, तो अपनी उसी अनादि अवस्था में पहुंच गई। सारा ड्रामा समेट करके बाबा मैं आपके पास आ गई हूँ, अब मैं और आप बस दो ही हैं, कोई नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं है, बस इतना ही याद है मैं हूँ, बाबा है, परम धाम है, शांति है, बाबा का प्यार है, बाबा का सानिध्य है, बस मुझे इतना ही याद है। दिन भर में क्या हुआ? कुछ भी याद नहीं, फुल स्टॉप लगा दिया, बाबा को सुना दिया, डिलीट कर दिया, कंप्यूटर में सारा दिन आपने आंकड़े भरे, फिर सारे डिलीट कर दिए, काम का कोई था ही नहीं, तो सारे डिलीट हो गए, खाली हो गया डेस्कटॉप पे, अब कुछ भी नहीं, अंदर कोई फाइल नहीं, तो हमने भी कंप्यूटर खाली कर दिया, कोई फाइल नहीं है, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, अब तक जो बीता वो ड्रामा बिंदु, और बिंदु बन करके बिंदु बाबा के साथ अनादि स्थिति में विश्रामी हो गए। देखो कितना प्यारा अनुभव है ये, आत्मा कितनी आनंदित है, वो नींद नींद नहीं है, वो योग निद्रा है। ऐसी नींद के भी नंबर योग के नंबरों के साथ जुड़ जाते हैं। अब ऐसी नींद में कोई सपना ही नहीं आएगा, और अगर सपना आएगा तो उसमें बाबा, बाबा की बातें, बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा, बस यही कुछ आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। सुबह आत्मा उठेगी, उसे ऐसे लगेगा कि मैं बाबा के पास थी और नया जीवन शुरू करने के लिए नीचे जा रही हूँ। बहुत मजे का अनुभव है ये, जैसे बाबा से गुड मॉर्निंग की और एक बार नीचे आए, उठेंगे तो हाथ मुँह धोएंगे, शरीर में तो आना पड़ेगा, तो ऊपर से अभी अभी आत्मा उतर के आई, बाबा कहता है तुम सब अवतार हो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि तुम्हारा ये जो जीवन है ये है ही किसके लिए? सेवा के लिए है। तो जैसे दुनिया में लोग अवतार हुए, अवतरित हुए, लोग मानते हैं, जब दुख बढ़ गया तो अमुक अवतार आया, तो ये हमको ऐसे ही लगेगा कि बस मैं अभी उतर के आया हूँ। उतर के आई हुई आत्मा का पहला जन्म कैसा होता है? जीवन मुक्त होता है ना, तो मैं अभी अभी आत्मा उतर के आई, मैं जीवन मुक्त हूँ, शरीर रूपी कपड़ा पहना और फिर योग में बैठ गए, योग में बैठ करके फिर देह से न्यारे हो गए। तो जिस स्थिति में थे उसमें फिर आना क्या मुश्किल है? अनादि स्थिति में थे और फिर अमृत वेले योग में बैठे, फिर उसी अनादि स्थिति में चले गए, कोई भाव नहीं, स्वभाव नहीं, स्मृति नहीं, तो मन को कोई रोक टोक, मन को कोई उलझन तो है ही नहीं, फिर पहुंच गए। अब आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी, बाबा से आप जिस भी संबंध से अनुभव करना चाहें, आजकल तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा कीजिए, दुनिया की आत्माएं बहुत चिल्ला रही हैं, बाबा से सहन नहीं होता है, सबको शांति चाहिए, तो बाबा कहते हैं आप बच्चे ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और जैसे फरिश्ता सारे ग्लोब को शांति और पवित्रता दे रहा है, पर फरिश्ते के पास कहाँ से आई, मुझे कहाँ से मिली, मुझे बाबा से मिल रही है, तो मेरा बाबा जो शांति और पवित्रता का अनंत स्रोत है, तो एक बहुत सुंदर आप दृश्य क्रिएट कीजिए कि बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं और मुझ फरिश्ते के ऊपर एक वो फवारा फवारा मुझ फरिश्ते को घेरे हुए हैं और वो मुझे भरपूर करता हुआ फिर आगे संपूर्ण ग्लोब को भी भरपूर कर रहा है। जैसे कोई प्यासा पानी की बूंद देख करके कितना हर्षित होता है, तो विश्व की सब आत्माएं, भले उस समय आत्माएं सोई पड़ी होंगी, दुनिया की आत्माएं, लेकिन वाइब्रेशन एक ऐसी चीज है जो सोए हुए को भी प्रभावित करता है, जागृत को भी प्रभावित करता है। वाइब्रेशन में बड़ी भारी ताकत है। अगर आप शुद्ध वाइब्रेशन वाली जगह किसी गलत संस्कार वाले को भी सुला देंगे तो उसको नींद में वो वाइब्रेशन प्रभाव डालेंगे, उसकी नींद बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसलिए देखो वाइब्रेशन का कितना प्रभाव पड़ता है। कई थके हुए, दुखी, अशांत, नेगेटिविटी से भरे हुए लोग जब किसी मधुबन या किसी सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ जाते ही उनको नींद आ जाती है। कहते हैं दो दिन हो गए सोए हुए, आज बड़ी मीठी नींद आई। तो किसी ने उनसे बात थोड़े की है, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिक अंदर काम कर रहे हैं और उस अनिद्रा वाले को भी नींद आ गई। तो काम किया कि नहीं किया वाइब्रेशंस ने? ऐसे ही दुनिया की वो आत्माएं, किसी को शांति चाहिए, किसी को नींद चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, जब आप सुबह सुबह ऐसे इस वायुमंडल को शांति से भरेंगे तो वो आत्माएं कैच करेंगी। उनको आवश्यकता है, उन्हें अपनी आवश्यकता की चीज की अनुभूति होगी और वो कैच भी करेंगी, अनुभव भी करेंगी, भले उन्हें स्पष्ट मालूम नहीं पड़ेगा कि ये वाइब्रेशन आए कहाँ से, लेकिन उनके निराश मन को एक आश बंधेगी कि कहीं से शीतलता आ रही है, शांति आ रही है, जीने की कुछ किरण दिखाई दे रही है, कुछ आश बंध रही है, लगता है मुझे कुछ मिलने वाला है। क्या मिलेगा, कब मिलेगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन कोई है अदृश्य शक्ति जो मेरे पे कृपा कर रही है और ये कृपा मेरे जीवन में बड़ा बड़ा हौसला, बड़ा काम देने वाली है, इसकी मुझे बहुत जरूरत है, इसी की मुझे जरूरत है। आत्मा को ऐसा अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सुबह फरिश्ते चक्र लगाते हैं अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी ऐसी मान्यता है, देवताओं का पहरा होता है, फरिश्तों का पहरा होता है। अगर आप सुबह सुबह जाएंगे तो देवता आपके साथ चलेंगे। लोग जब ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा करते थे तो कहते थे डरना मत, सुबह सुबह देवता आपके साथ चलेंगे, फरिश्ते आपके साथ चलेंगे, आप अकेले नहीं। तो ये अमृत वेले का समय वास्तव में हम बच्चों का वाइब्रेशन देने का समय है। तो भक्ति मार्ग में उसी की यादगार चली आ रही है। तो आप सुबह सुबह ऐसे अपने मन को भरिए। अगर आप कहते हैं कि शांति का दान देने के अलावा और भी बहुत सारे तरीकों से हम योग कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप बीज रूप अवस्था में बैठिए, जिस अनादि स्थिति में आप बैठे थे उसी अनादि स्थिति में आप बैठे रहिए, जिस अनादि स्थिति से में आप जागे थे उसी अनादि स्थिति में फिर चले जाइए बीज रूप अवस्था में। बाबा ने हम बच्चों को काम दिया हुआ है संस्कार परिवर्तन का, तो हमारे जो संस्कार बहुत कड़े हैं, अनेक जन्मों के हैं, अगर आप उस अनादि स्थिति में टिके रहते हैं, जिसको बीज रूप अवस्था कहते हैं, बिंदु रूप अवस्था कहते हैं, या जिसको ज्वाला स्वरूप योग की अवस्था कहती हैं, उसमें आपको ऐसे लगेगा कि बाबा से जो शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, वो मेरी सब पुरानी बातों को डिलीट कर रही हैं, मिटा रही हैं। जैसे मुझ आत्मा को सब कुछ विस्मृत होता जा रहा है, पुराना, नया नहीं, पुरानी चीजें अपना स्थान छोड़ती जा रही हैं, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें ऑटोमेटिक छोड़ गई। जैसे अपन गोली खाते हैं तो शरीर के अंदर कुछ लाभदायक बैक्टीरियाज भी होते हैं और कुछ हानिकारक बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो वो गोली क्या करती है, लाभदायक को नुकसान नहीं पहुंचाती, जो हानिकारक बैक्टीरियाज है उनको खत्म कर देती है। तो बाबा से जो लाइट और माइट मुझ आत्मा को मिल रही है, वो मेरे जो लाभदायक संस्कार हैं उनको तो परिपक्व कर रही है, लेकिन जो मेरे नेगेटिव हैं, दुखदाई हैं, पुराने हैं, उनको वो ऑटोमेटिक खत्म कर रही है। ये एक बहुत सुंदर प्रोसेस है, संस्कार परिवर्तन का ये सुंदर प्रोसेस है। इसके बिना संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता। अगर आप बीज रूप अवस्था में नहीं बैठेंगे, संस्कार मिटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के बिना हमें स्मृति बनी ही रहती है। केवल ये एक अवस्था है जिसमें आत्मा अपनी स्मृतियों से विस्मृत हो जाती है, पुरानी स्मृतियों से विस्मृत हो जाती है। तो आप ये भी बहुत सुंदर अनुभव करेंगे, धीरे धीरे आपको ये भी अनुभव होगा कि बाबा के संस्कार और मेरे संस्कार एक समान, मैं आत्मा बाप समान। और उस स्थिति में हमें तो ताकत मिलती ही है, लेकिन विश्व की सेवा भी ऑटोमेटिक होती है। ऐसा नहीं है कि उस समय विश्व सेवा नहीं होती, क्योंकि हम जहां बैठे हैं उस स्थान के वाइब्रेशन कितने पावरफुल हो जाएंगे, हमारे आसपास भी कोई आएगा उसको भी उस स्थिति की अनुभूति हो जाएगी। इतनी अच्छी, एकदम डेड साइलेंस, एकदम जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस। बाबा कहते हैं कोई बहुत अच्छा सन्यासी शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा छा जाता है, तो इस सन्नाटे की स्थिति होती है। और इसके अलावा आप और भी अनुभूतियां कर सकते हैं, जिनको बाबा कहता है वतन में बाप दादा के साथ फरिश्ता रूप में मिलन, उसमें आप बाबा से सर्व संबंधों के सुख का अनुभव कर सकते हैं। बाबा से मुझ आत्मा के सर्व संबंध, आप प्रतिदिन एक एक संबंध का अनुभव कर सकते हैं। खुदा दोस्त के रूप में खुदा को अनुभव कीजिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या कहता है, ऐसे ही देखो हमारा खुदा दोस्त भी रोज हमको क्या कहता है। दुनिया में जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो कहता है अरे मेरे होते तू चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं ना, तू मौज कर। कहता है ना दोस्त, मैं किस लिए हूं। तो खुदा दोस्त भी हम बच्चों को रोज क्या कहता है, मैं इतना बड़ा तुम्हारा दोस्त बैठा हूं तो तुम मौज करो, मैं किस लिए हूं, मैं कब काम आऊंगा। दोस्त ऐसे ही कहता है ना, मैं कब काम आऊंगा, तूने मुझे किस दिन के लिए दोस्त बनाया था। तो खुदा दोस्त भी हमको बार बार याद दिलाता है मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। दुनिया वाला दोस्त तो पता नहीं, कुछ असंभव काम न भी कर सके, लेकिन बाबा के लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं, जहां भगवान है वहां सब कुछ पॉसिबल है। तो अलग अलग संबंधों से आप बाबा के प्यार का अनुभव कीजिए, उस प्यार में खो जाइए। तो ये आपने बाबा को सुबह सुबह साथी बना लिया। जब बाबा सुबह सुबह साथी बन गया तो सारा दिन साथी बन के रहेगा। जो आदि काल में होता है वो मध्य काल में और अंत काल में भी होता। आदि काल में ईश्वरीय प्रेम से अपने मन को भर लीजिए, सारा दिन मन ईश्वरीय प्रेम से भरा रहेगा। और बाबा ने यह भी कहा है, जो आदि काल में मुझे याद करेगा वो सतयुग के आदि काल के सुख भी अनुभव करेगा। तो सारा दिन साक्षी होके इंद्रियों से कर्म करवाइए और बाबा को साथी बना के चलिए। तो हम बाबा के बच्चे दुनिया से साक्षी हैं और भगवान के साथी हैं। वैसे भी लौकिक दुनिया में कहती हैं कि भगत का और जगत का आपस में बैर होता है। क्यों बैर होता है? क्योंकि जो जगत कहता है वो भगत नहीं करता और जो भगत कहता है वो जगत नहीं करता। तो भक्ति में तो बैर कहा, बाबा बैर नहीं कहता, क्योंकि वैर होता है तभी तो एक दूसरे से दूर होते हैं ना। लेकिन वैर ऐसी चीज है कि दूर होते भी मन में उसका चिंतन चलता रहता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, दुनिया से वैर मत करो पर दुनिया से साक्षी हो जाओ। वैसे भी इस मिटने वाली दुनिया से अब मन लगाना क्या? तो ये दुनिया अब जाने वाली है, मिटने वाली है। जब कोई व्यक्ति, डॉक्टर जब घोषित कर देता है कि भाई अब ये 2 घंटे और जिएगा, 4 घंटे और जिएगा, तो घर वाले क्या करते हैं? अपने मोह को समेट लेते हैं, जाने वाला है, अब क्या इसके बारे में सोचना है, क्या इसकी चिंता करना। तो दुनिया भी जाने वाली है, अब क्या इसके बारे में सोचना, चाहे इसमें कुछ भी हो रहा है। कोई कहता है जी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, होते रहे। सबसे बड़ा आविष्कार तो एक ही था कि भगवान आ गया, वो हो गया, असंभव संभव हो गया। बाकी कितने भी आविष्कार हो लो किस काम के। कोई कहता है जी मकान बड़े सुंदर सुंदर बन रहे हैं, कोठियां भवन बिल्डिंग बनते रहे। बाबा कहता है बच्चे सब कुछ ताश के पत्ते की तरह से गिरने वाला है। कोई कहता है जी सुविधा के बहुत साधन निकल आए हैं, सुख के साधन बहुत निकल आए हैं। बाबा कहते हैं दुख की दुनिया में साधनों का सुख भी अल्पकाल का है, इस घड़ी सुख अगली घड़ी दुख, चाहे वो एरोप्लेन हो, मोटर हो, गाड़ी हो, रेलगाड़ी हो, जो भी हो। तो इस दुख की दुनिया में सुख है ही नहीं, अगर है तो अल्पकाल का है। कोई कहता है जी खाने के व्यंजन बड़े अच्छे अच्छे आजकल निकले। बाबा कहता है बाबा को भोग लगा के जो खाते हैं ना वही औषधि है, बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ शरीर को रोग देने वाला है, भले आप अल्पकाल का स्वाद। तो बताइए किस चीज में क्या सुख है, हर चीज का साइड इफेक्ट है। तो इसलिए जाने वाली इस दुनिया से क्या दिल लगाना। मृत्यु सैया पर जो चीज है, हमारा एक चित्र है ना जिसमें इमरजेंसी घोषित हो गई है, ये मृत्यु सैया पे लेटी है पृथ्वी और इसको ऑक्सीजन लगा रखी है और इसके सिर पर मिसाइल है। पहले लोगों को लगता था कि ये अतिशयोक्ति है, लेकिन आजकल तो लोग ही कह रहे हैं कि ये रियल है, अतिशयोक्ति नहीं है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, बाबा ने कहा महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी फिर एकदम सस्ता ही हो जाएगी। सतयुग में तो कीमत ही नहीं रहेगी चीजों की, लेकिन अभी तो महंगाई और बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? बाबा ने कहा इतनी बढ़ेगी कि किसी में कैपेसिटी नहीं होगी, मेजॉरिटी में कैपेसिटी नहीं होगी कि वो चीजें खरीद सके। और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि जो पहला झगड़ा होगा वो किस पर होगा, याद है? पहला जो दंगा होगा, लड़ाई होगी, वो अन्न पर होगा। ये बाबा के महावाक्य हैं। क्योंकि व्यक्ति को कपड़ा रोज नहीं चाहिए, एक बार कपड़ा बनवाया साल भर तक चल जाएगा। मकान रोज नहीं चाहिए, अच्छा ना भी हो तो व्यक्ति बिना मकान के भी चलो जैसे तैसे बैठ के कैसे भी गुजारा करता है, लेकिन भोजन कितनी बार चाहिए? एक बार, दो बार, तीन बार, और कईयों का तो तीन बार से भी काम नहीं चलता। अब भूख लगी है और खाना मिल नहीं रहा है, कहते हैं पेट की आग सबसे भयंकर होती है। लोगों ने तो इसका नाम ही निकाल दिया पापी पेट। पापी आंख कोई नहीं कहता, पापी पेट कहता है, क्योंकि भूख लगती है और ना मिले तो क्या करता है व्यक्ति? छीना झपटी मार पीट। वर्तमान समय, इस साल से पहले जो आंकड़े थे उसमें कहते थे भारत में 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आजकल समाचार आ रही हैं कि उसमें 5% की वृद्धि हो गई है अभी अभी में, भ्रष्टाचार और ये सब महंगाई बढ़ी, अब कहते हैं 45% हो गई है, 6 महीने में 5% की बढ़ोतरी हो गई। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे गरीबी रेखा के नीचे के लोग भी बढ़ते जाते। अब अगर 6 महीने में 5% बढ़ गए तो आगे क्या होगा, बढ़ेंगे के घटेंगे? बढ़ेंगे। अब गरीबी रेखा से नीचे के लोग मान लीजिए 60-70-80% तक पहुंच गए और गरीबी से ऊपर वाले रह गए 20%, फिर क्या होगा? अभी तो माइनॉरिटी है ना उनकी, अमीर हैं 60% या 55%, गरीब हैं 45%, वो माइनॉरिटी में। लेकिन जब वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? मैं भी भूखा, तू भी भूखा, और इसके पास अनाज का ढेर पड़ा है तो क्या करेंगे? छीना झपटी मार पीट, ये सब कुछ शुरू होगा। और एक बार ये सब कुछ शुरू हो जाएगा फिर कौन बचाएगा? अभी जितने लोग दंगों पे उतर आते हैं तो उनको बचाने के लिए पुलिस कम पड़ जाती है, और जब इतने भूखे लोग भी दंगे वालों में शामिल हो जाएंगे फिर क्या होगा? कहाँ से इतनी पुलिस और कहाँ से इतनी आर्मी आएगी जो उनको बचा सके? तो क्या होगा? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ऐसा समय आने वाला है संचार माध्यम नहीं होंगे, मुरली नहीं मिलेगी, आने जाने के साधन नहीं होंगे, कहीं कहीं तो अन्न पानी भोजन भी नहीं मिलेगा, सप्लाई बंद हो जाएगी, आपका ट्रक भरा हुआ जा रहा है अनाज का, बीच में ही भूखे लोगों ने पकड़ लिया, वो पहुंचा ही नहीं, क्या करेंगे आप? मंडियों में सब्जी नहीं पहुंची, दुकानों में अनाज नहीं पहुंचा, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आप दुकान में जाते हो भले महंगा मिलता है, मिल तो जाता है, लेकिन जब सप्लाई नहीं होगी सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा फिर क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ जितना कर सकते हो कर लो, फिर पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा। तो उस समय हमारी अभी की संचित तपस्या हमको काम आएगी। उस समय वो भूखे लोग हमसे भी शांति मांगेंगे, लूटने वाले भी मांगेंगे, जो लूट गए वो भी मांगेंगे। तो बाबा कहते हैं इतनी शांति की शक्ति एकत्रित की है, जो उस समय आप ये तो नहीं कहोगे ठहरो मैं भर लूं अपने अंदर फिर बांटूंगा। बाबा कहते हैं जैसे गंगा में लोग स्नान करने जाते हैं तो गंगा ये थोड़े कहती है मैं पहले तैयारी कर लूं फिर जरा डुबकी लगाना, कहती है क्या? गंगा हमेशा रेडी है। तो ऐसे ही आप बच्चे भी एवर रेडी रहो, लेकिन एवर रेडी वही रहेगा जो खुद अंदर से भरपूर होगा। तो हमको इतना भरपूर रहना है, इतनी अपने अंदर शक्ति एकत्रित करनी है। ओम शांति।